श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री बरसानो धाम। प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारो श्री बरसानो धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय जय राधे जय जय राधे जय श्री राधे। श्री लाडली लाल की जय। श्री कृष्ण बलराम नंद यशोदा महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। नंदगांव धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री बरसाना धाम की यमुना मई की श्री गिरी गोवर्धन की श्री गोपेश्वर महादेव की श्री वृंदा देवी की श्री उज्जवल सुबल सखा की श्री ललिता विशाखा देवी की श्री राधा कुंड श्याम कुंड की श्री लाडली लाल की जय। जय श्री राधे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज के इस बरसाना धाम के यात्रा में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपके कुतूहल को शांत करूंगा। ये जो मैं आज वस्त्र पहना हूं वो राधा रानी का श्रृंगार का महावस्त्र है, महाप्रसादी वस्त्र है, भक्तों के ब्रजवासियों की कृपा से प्राप्त हुआ है। और ये जो माला है ये भी राधा रानी के श्रृंगार की माला है, महाप्रसादी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बात बताना भूल गया, ये नीला वस्त्र जो है ये राधा रानी को बड़ा पसंद है, इसका कारण सबको पता होगा ही, क्योंकि भगवान नीले रंग के हैं, इसलिए राधा रानी भी हमेशा नीला वस्त्र पहनती है। उनका लहंगा नीले रंग का होता है और ऊपर का वस्त्र जो है गुलाबी रंग का होता है। तो सबके लिए अनुरोध है कि शाम के लिए आप सब लोग गुलाबी वस्त्र पहन के आइए, तो राधा रानी का बरसाने का भाव बना रहेगा। श्री बरसानो धाम जय जय श्री राधे, जय बरसानो धाम जय जय श्री राधे। एक मिनट, तो हम सब लोग अभी बरसाना धाम में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके पहले कुछ बातें आपको बताना बहुत जरूरी है। श्री बरसाना धाम ब्रज मंडल, मथुरा मंडल, वृंदावन धाम, वृंदावन मंडल, इसमें विशेष धाम है। इसका कारण क्या है कि जितने भी ऋषि मुनि देवता महात्मा जन, सिद्ध जन, तपस्वी जन, ध्यानी जन, जितने भी ज्ञानी जन, मोक्ष कामी, सिद्धि कामी, हाँ, सब प्रकार के लोग श्री वृंदावन धाम में आते हैं श्री कृष्ण के चरणों की धूल को प्राप्त करने के लिए। तो श्री कृष्ण भगवान श्री वृंदावन धाम में बिना पादत्राण यानी चप्पल जूता पहने बिना घूमते हैं, इसलिए उनके चरणों की रज जो है वो केवल वृंदावन धाम में मिलती है। इसलिए सभी जितने भी धाम है वहां पर न मिलने पर सभी देवता, भगवान के अवतार भी जितने हैं, विष्णु के अवतार जितने हैं, देवता जितने हैं, ऋषिगण हैं, सब वृंदावन धाम में भगवान के चरणों की रज देने के लिए आते हैं। लेकिन भगवान स्वयं उनके स्वयं के कल्याण के लिए, तो वो सोचते हैं कल्याण होना जरूरी है, तो भगवान राधा रानी के चरणों की रज देने के लिए बरसाना आते हैं। क्योंकि राधा रानी वहां पर बिना जूता पहने विहार करती हैं, उनके चरणों के तलुओं का स्पर्श बरसाने की भूमि से होता है, इसलिए वहां पर राधा रानी के चरणों की रज उपलब्ध है। इसलिए न केवल कृष्ण वहां जाते हैं रज देने के लिए, लेकिन रज को माथे पे लगाते हैं, न केवल माथे पे लगाते हैं लेकिन रज में खुद लोट पोट हो जाते हैं। ही रोल्स इन द डस्ट ऑफ वृंदावन, बरसाना धाम। तो सावधान रहिए, हाँ, बरसाने में प्रवेश करने के पहले सावधान रहिए, अपने आप को तैयार कीजिए, अपनी चेतना को तैयार कीजिए कि हम किसी साधारण क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं जा रहे हैं। जो क्षेत्र स्वयं कृष्ण के लिए वंदनीय है, पूजनीय है, आदरणीय है, उस क्षेत्र में हम अभी प्रवेश करने जा रहे हैं। दूसरी बात, श्री कृष्ण वहां पर जाते तो हैं, लेकिन जाते कैसे हैं, प्रवेश लेते कैसे हैं? वो परम पुरुषोत्तम, नीला पुरुषोत्तम, परात्पर गोलेश्वर, गोलोकेश्वर भगवान जो हैं, वो अपना पुरुष शरीर छोड़कर, मतलब पुरुष शरीर तो है लेकिन सखी वेश धारण करके प्रवेश करते हैं। देखिए, किसी पुरुष के लिए ना स्त्री का वेश धारण करने के लिए भी बहुत संकोच होता है। ड्रामा में भी किसी व्यक्ति पुरुष को अगर स्त्री का रोल दिया जाए तो संकोच होता है, ये पुरुषी अहंकार है। अब ये तो परम भगवान है, सर्वोत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, और सर्वोत्तम पुरुष क्या कर रहे हैं, वो बहुत देखने लायक और समझने लायक और प्रेरणा लेने लायक है। राधा रानी की कृपा, राधा रानी का कृपा कटाक्ष, राधा रानी का फेवर, आनुकूल्य प्राप्त करने के लिए ये सखी बनकर बरसाना धाम में प्रवेश करते हैं। यहां तक कि महादेव जी, सभी जितने देवता हैं, वो सभी लोग सखी बनकर उसमें प्रवेश करते हैं। और सखी बनने का मतलब ये नहीं कि स्त्री बनना, सखी बनने का मतलब है, सखी भाव का मतलब है दास्य भाव, सेवक भाव। उसका मतितार्थ यह है कि हमें सेवक बनकर वहां जाना है। श्री कृष्ण भगवान हमारे आराध्य दैवत हैं, हमारे आराध्य परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, हमारे लिए वंदनीय, पूजनीय और प्राप्त करने लायक हैं। हमारे विषय हैं, वो विषय विग्रह हैं, वे भी उदाहरण के रूप में, हाँ, हम सबके लिए उदाहरण स्थापन कर रहे हैं कि सखी वेश में बरसाना में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए आइए सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमें वो दास्य भाव, सखी भाव, सेवक भाव, नम्र भाव प्राप्त हो। दूसरी बात, संत लोग बताते हैं कि बरसाना में जाना है, वृंदावन धाम में जाना है, तो रजोगुण तमोगुण को छोड़ देना चाहिए, शुद्ध सात्विक भाव को अपनाना चाहिए। तो शहरी जितने भी हमारे कलमश हैं, दोष हैं शहरी जीवन में, तो सारे भावों को लेकर वहां नहीं जाना चाहिए। जितना बाहर का भाव लेकर वहां जाएंगे, उतना अंदर का भाव हमें प्राप्त नहीं होगा बरसाने धाम का। इसलिए सब कुछ भूल जाओ, हम बार बार विनती करते हैं, बरसाना में प्रवेश कर रहे हैं, सब कुछ भूल जाओ कि आप कौन हो, पुरुष हो कि स्त्री हो, काले हो कि गोरे हो, देशी हो कि विदेशी हो, बच्चे हो कि बड़े हो, सुंदर हो कि कुरूप हो, धनवान हो कि गरीब हो, विद्यावान हो कि अनपढ़ हो, सब भूल जाओ। क्योंकि ये सब कुछ हमारा क्या कहते हैं, अशाश्वत हमारी पहचान है। सब कुछ ये टेम्पररी है, नश्वर है, समाप्त होने वाला है। जो बचने वाला है उसी को साथ लेके बरसाना जाओ। बचने वाला क्या है? आत्मा, आत्मा का भाव, आत्मा की चेतना, आत्मा का सेवक भाव, आत्मा का बरसाना चेतना, आत्मा की सेवा की चेतना, नम्र चेतना, इन सबको बटोरो। और इन सबको बटोर कर केवल इन्हीं को लेकर बरसाने में चलो, बाकी सब कुछ भूल जाओ कि मैं कितना बड़ा मैनेजर हूँ, कितना बड़ा धनी हूँ, कितना बड़ा विद्यावान हूँ। ये सब जो अहंकार करने वाली चीजें हैं सब छोड़ दो, ये सब नश्वर चीजें हैं, आज है तो कल नहीं है। अंतिम समय पर जो काम आएगा वही साथ लेकर चलो बरसाना धाम में। और श्री राधा श्री राधा श्री राधा रटते रहो। श्री राधा रानी का नाम देखिए, एक बड़े संत थे वृंदावन में बरसाने में, उन्होंने जीवन भर 70 साल के आयु तक उन्होंने केवल यही सेवा की। हर जगह पर दीवार पे, पेड़ों पे, जगह जगह पर श्री राधा का नाम उन्होंने इस तरह से श्रृंगारित करके लिखा। अभी बेचारे वो संत जो है वो पिछले साल उनका देहांत हो गया, उनकी बहुत इच्छा थी कि उनका सब जगह पर राधा रानी का नाम हो, और उन्होंने अथक प्रयत्न करके अपने जीवन भर में श्री राधा का नाम जो है वो सब जगह पर लगाया। कुछ कुछ लोगों ने अपना रीपेंटिंग किया तो फिर में पेंटिंग कर दिया, तो बहुत दुखी हो गए थे जब वो मरणासन्न अवस्था में थे, तो बड़े दुखी हो गए थे। लेकिन हमने कुछ उनके नाम के चित्रपट निकाल के रखे, उसमें से एक चित्रपट है श्री राधा। श्री वृंदावन धाम का, श्री बरसाने धाम का एकमेव अलंकार है उनका नाम। इसलिए राधा 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 कहिए, श्री वृंदावन जाइए, कृष्ण भगवान को पुकारिए। कृष्ण भगवान को अगर पुकारना है तो श्री राधा का ही नाम पुकारना होगा। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। एक मोर था, वो नंदगांव गया और कृष्ण कृष्ण गोपाल गोपाल दे नंदन नंदन यशोदा नंदन यशोदा के दुलारे, ऐसे अनेक नामों से उनको पुकारा, कुछ भी उनको प्रतिसाद नहीं मिला, नो रिस्पॉन्स। तो नीचे उतर के आया तो ब्रजवासी मिले, वो तो रो रहा था बहुत मोर। तो ब्रजवासियों ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा बहुत कृष्ण को पुकारा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ब्रजवासियों ने बताया भी आप बरसाने जाओ और बरसाने जाके राधा रानी को पुकारो और उनसे पूछो क्या करना है। तो ये मोर बरसाने गया और राधा रानी को पुकारा, रा और धा पूर्ण होने के पहले ही राधा रानी वहां प्रकट हो गई। मोर को अपने गोद में लिया, उनके अश्रु पहुंचे और पूछा क्या हुआ। फिर हम नंदगांव गए थे, वहां पर हमने कृष्ण भगवान को पुकारा, कोई जवाब नहीं मिला, तो क्या करें। तो राधा रानी का कोई बात नहीं, आप अगली बार जब जाओगे ना बरसाना, अब नंदगांव जाओगे तो कृष्ण को नहीं पुकारना, राधे राधे पुकारना, कृष्ण को नहीं पुकारना, राधे राधे पुकारना। तो ये गया नंदगांव और राधे ये रा और धे पूर्ण होने के पहले ही कृष्ण भगवान भाग के आए। हाँ, रा और धे पूर्ण होने के पहले ही कृष्ण भगवान भाग के आए और इस मोर को गोद में लिया और बड़े प्रेम से दुलारा। मोर तो क्या कहते हैं उसको, अति आनंद की भावना में बड़े भाव विभोर हो गए और मोर के पंख झड़े। तो उस भावना में झड़े हुए पंखों को कृष्ण भगवान ने एक मोर पंख उठाया और अपने सर पे लगा दिया। इस तरह से ये कृष्ण का ध्यान आकर्षित करना है तो कहते हैं इंग्लिश में वो इज अ वेरी श्रूड लवर, हाँ बहुत धूर्त प्रेमी है वो। अनन्यश्चिन्तयन्तु माम योजनाः पर्युपासते, 100% अनन्य उनके प्रति भाव जब तक नहीं निर्माण होता है तब तक वो देखते भी नहीं उसकी तरफ, लेकिन अनन्य भाव होने के पश्चात 100% 99.99% भी नहीं 100% होने के बाद ही वो अपनी ओर देखते हैं, हाँ? लेकिन राधा रानी उसके पहले भी हमारी ओर निहारती है बड़े प्रेम से। राधा रानी का भाव ऐसा है कि किसी भी जीव में अगर कृष्ण के प्रति इतना सा भी आकर्षण हो, इच्छा हो, भाव हो, तो राधा रानी उसको तुरंत स्वीकार कर लेती है। ललिता जी को आदेश लेकर रखा है कि जो भी जीव है, मुमुक्षु जीव है, जो भी जिज्ञासु जीव है, उन्हें ले आओ हमारे पास। और राधा रानी अपने ही छत्र छाया में, अपने ही चरणों में रखते हुए उन भक्तों को तैयार करती है और तैयार करके श्री कृष्ण को अर्पण करती है। इसलिए हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में भी राधा रानी कैसी है, ऐसा हाथ है उनका। कृष्ण को क्या अर्पण कर रही है, हमें अर्पण कर रही है, हा? और जब कृष्ण को राधा रानी किसी को अर्पण करती है तो उसको कृष्ण नकार नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। इसलिए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। एक में हमारी पूंजी है राधा रानी, एक में हमारे लिए आशा है, हमारे पतित और बहुत ही क्या कहें हमारे बारे में क्या कहें, ऐसा हमारा जीवन पतित जीवन है। ऐसे पतित जीवन में निराश अवस्था में भी राधा रानी हमारे लिए आशा का किरण है। इसलिए आइए राधा रानी को हृदय में बसाकर उनका नाम मुख में लेकर हम बरसाने का प्रवेश करने का प्रयास करें। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी का नाम लेने का अनोखा तरीका हमको बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नाम्नाम् कलि सर्व कल्मष नाशनम् नतः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। चैतन्य महाप्रभु ने रास लीला का सर्वोत्तम आनंद जो जीव को प्रदान भगवान कृष्ण करते हैं, वो सर्वोत्तम आनंद इन 16 अक्षरों के महामंत्र के रूप में हम लोगों को प्रकट मतलब दे दिया है, प्रदान किया हुआ है। और इस महामंत्र के अंदर जो हरा है, हरे कृष्णमती राधा रानी, एक युगल मंत्र है जो शिव जी ने पार्वती को दिया था, शास्त्रों में वर्णन है उसका, और भगवान नारायण ने भी शिव जी को दिया था। और एक हरे कृष्ण महामंत्र है जो कलि संतारण उपनिषद में उसका उल्लेख आता है। और स्वयं राधा रानी स्वयं जब कृष्ण के हृदय के अंदर प्रवेश करती है और कृष्ण का रूपांतर गौरांग महाप्रभु में हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वो हरे कृष्ण महामंत्र लेकर आते हैं और सबको सबको पात्रे अपात्रे ना देखिला ना देखिला स्थाने स्थान सबको बांटते हैं। श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में जब आते हैं तो वो बड़े दयालु बन जाते हैं, जब राम के रूप में आते हैं तो सब राक्षसों का भयंकर अपने क्रोध से और वो धनुष बाण से वध कर देते हैं। श्री कृष्ण के रूप में आते हैं तो आधा समय बिना शस्त्र के वध कर देते हैं, बाद में शस्त्र के साथ करते हैं। तो राधा रानी उनको पूछती है कितने क्रूर हो आप, ऐसे आगे पीछे हाँ दे धनाधन सबको वध करते जा रहे हो। तो राम के रूप में सीता ने भी उनको यही कहा था, अरे आंखों में से नजर भी नहीं आती इतने बाण चलाते हो आप, कितने लोगों का वध कर देते हो। तो फिर अगले जन्म में उन्होंने कहा कि मैं अभी ना अगले जन्म में बिना शस्त्र के वध, ना शस्त्र से वध नहीं करूंगा। तो जितनी ब्रज लीला है ना उन्होंने सब, किसी को मुक्का मारा है, किसी को लात मारी है, किसी को मुंह में हाथ डाला है, किसी को कुछ किया है, पैर से घुमा दिया है, वध कर दिया। फिर भी राधा रानी थोड़ी सी असंतुष्ट थी कि आप बड़े क्रूर हो एक्चुअली। तो उन्होंने सोचा कि भी राधा रानी की इच्छा पूरी करनी चाहिए तो गौरांग महाप्रभु के रूप में देखिए कृष्ण में कितना परिवर्तन हुआ और क्यों हुआ बताते हैं। राधा रानी का भाव स्वीकार किया तो कृष्ण बदल गए पूरी तरह से, हाँ किसी का वध नहीं किया उन्होंने, किसी का भी वध नहीं किया, भयंकर से भयंकर भी राक्षस का उन्होंने वध नहीं किया, केवल करुणा करुणा और करुणा। ये श्री कृष्ण में परिवर्तन लाने की शक्ति केवल राधा में है, श्री राधा रानी में है। जब वो कहीं भी प्रवेश करती है केवल करुणा का प्रभाव सब जगह आच्छादित हो जाता है, सब जगह राधा रानी की करुणा छा जाती है। राधा रानी श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में जो करुणा का अंग है उसका मूर्तिमान स्वरूप है। जब वो कृष्ण के अंदर का करुणा का अंग पूरी तरह से मूर्तिमान स्वरूप में राधा रानी में प्रकट हो जाता है तो वो कृष्ण के करुणा से भी अधिक प्रभावशाली होता है। ये उसकी विशेषता है। कृष्ण के अंदर जो करुणा है वो भी करुणा सागर है, लेकिन वो करुणा द्विगुणित अनंत गुणित हो जाती है जब वो राधा रानी के व्यक्तित्व में प्रकट हो जाती है। इसलिए आइए हरे कृष्ण महामंत्र पुकारते हुए जो हरे है कि राधे को हम पुकार रहे हैं। राधे यानी हरे, हरा यानी राधा रानी, यानी वो सबका हृदय हर लेती है। यहाँ तक कि सबका हृदय हरने वाले हरि का भी हृदय वो हर लेती है, इसलिए उसका नाम हरा है। और उसको पुकारने में, उसको संबोधन में, सप्तमी में उसको हरे कहते हैं, हरे कृष्ण। तो हरे कहने का कारण क्या है कि हम कृष्ण को ध्यान अगर हमको आकर्षित करना है तो सबसे पहले हम राधा रानी को पुकारते हैं। फिर कृष्ण सोचते हैं कि मेरे राधा रानी को कौन पुकार रहा है, जब वो हमारी ओर मुड़कर देखते हैं हम कृष्ण कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कहीं कृष्ण का ध्यान हमारे से हटना नहीं चाहिए, इसलिए उसको हरे को इस तरह से उसको एडजस्टमेंट करके रखा है कि कृष्ण हमारी ओर निरंतर देखते रहे, बस उनका ध्यान हमारे से हटे नहीं। इसलिए हम बार बार निरंतर सदा जपिए कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी है, देखिए कितनी करुणामयी है, करुणामयी विश्व भानु नंदिनी राधा रानी। और देखिए राधा रानी का पोजीशन क्या है, यहां से एकदम जाहिर होता है श्री कृष्ण जो है वो राधा रानी के शिष्य के रूप में बैठे हुए हैं। अरे पूरे विश्व में उनकी मुरली प्रसिद्ध है, मुरली मनोहर के रूप में, लेकिन सीखी किससे है, राधा रानी ने उनको मुरली सिखाई है। यमुना किनारे देखो, पीछे यमुना किनारे का दर्शन है, यमुना किनारे नम्रता से बैठकर बालू में बैठकर श्री कृष्ण शिष्य बनकर राधा रानी को उच्च आसन में बिठाकर उनसे मुरली बजाने का ज्ञान लेते हैं, यहाँ तक कि नृत्य करने का भी ज्ञान लेते हैं। नटराज के नाम से प्रसिद्ध हो गए वो, लेकिन नटराज बने कैसे, अरे ता थक थई ये सब तो राधा रानी ने सिखाया उनको। और मुरली की तान, वेणु, मुरली, बांसुरी, ये सब का जो अद्वितीय ज्ञान है बजाने का, ये राधा रानी ने सिखाया है। राधा रानी उनको गुरु है, राधा रानी के चरणों में हमेशा विराजमान रहते हैं, कृष्ण लालायित रहते हैं, रति प्रेम और अनुराग राग का भिक्षा मांगते हैं उनसे, उनके सामने भिक्षुक याचक बन के रहते हैं, ये उनकी स्थिति है। देखिए यहाँ पर राधा रानी कृष्ण को मुरली बजाना सिखा रही है, कृष्ण सीख रहे हैं। तो ये बरसाने का छोटा सा मैप है, देखिए आप श्री जी मंदिर जो है भानु महल पर ऊपर है, ये दानगढ़ है यहाँ पर, उसके आगे ये जो दो पर्वत के बीच में सांकरी कोर है, बताएंगे आपको, यहाँ पर मानगढ़ है, यहाँ पर तीसरा सच्चे का गांव है, और यहाँ पर मोर कुटीर है, कृष्ण कुंड है, इस तरह से बरसाने का ये मैप है। और आगे जाएंगे निकल के तो ऊंचा गांव का रास्ता आता है 2 किलोमीटर के बाद में। तभी हम आपको थोड़ा सा इतिहास बताने का प्रयास करेंगे बरसाने का। सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था संक्षेप में, थोड़ा आज विस्तार में बताऊंगा। 3 महासतियां थी, वो वैकुंठ में गई थी, और वैकुंठ में कृष्ण के दर्शन करने के पहले, भगवान विष्णु के दर्शन करने के पहले उधर द्वार में उनको 4 कुमार मिले। तो बहुत वयोवृद्ध ऋषि हैं, बहुत ही लाखों करोड़ों अरबों साल के वृद्ध ऋषि हैं, लेकिन वो योग बल से अपने शरीर को केवल 4 साल का ही बना के रखते हैं ताकि काम वासना उनके शरीर में प्रवेश न करे। तो बालक समझकर जल्दी जल्दी में 3 महासतियों ने उनको प्रणाम नहीं किया, तो 4 कुमारों ने उनको श्राप दे दिया कि आप पृथ्वी पर जाओगी, मानवी बनोगी। तो बड़ा दुख हुआ उनको, लेकिन दुख हो कर ही रहे थे उसमें विष्णु बाहर आ गए, और विष्णु ने कहा कि अरे ये आपके लिए श्राप नहीं है, वरदान है, क्योंकि मेरी जो 3 महासतियां हैं शक्तियां, उनकी माता बनने का भाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। तो उसमें से एक बनी पार्वती की माँ मेनका, मैना कह सकते उनको, दूसरी बनी सुनैना जो सीता की माँ बनी, और तीसरी बनी कलावती जो आगे जाकर अगले अवतार में कीर्तिदा बनी, और कीर्तिदा ने राधा रानी को जन्म दिया। तो ये जो कलावती हैं, इसका विवाह सुचंद्र राजा से हुआ और कलावती का जो कन्नौज यानी जो कन्याकुब्ज है कन्नौज, वहां पर भलनंदन राजा के यज्ञ कुंड से कलावती का जन्म हुआ था, यानी कि वह अयोनिज जन्म था, दिव्य जन्म था। कलावती का विवाह सुचंद्र से हुआ। सुचंद्र और कलावती ने मिलकर 12 स्वर्गीय वर्ष तप किया। केवल पेड़ से गिरने वाले पत्तों को ग्रहण करके उन्होंने कठोर तप किया। उस कठोर तप के अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पूछा, क्या चाहते हो? वरदान मांगो, हम प्रसन्न हैं आपसे। तो सुचंद्र महाराज ने कहा कि हमें मोक्ष दे दो। तो ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। तो कलावती ने क्रोध किया उस समय, ब्रह्मा जी से पूछा, अरे ऐसे कैसे वरदान देते हो आप, मेरे होते हुए पति को मोक्ष दे रहे हो, मेरा क्या होगा? तो महासती थी, ब्रह्मा भी डरते हैं महासती से, सभी लोग ध्यान रखना, ये जो सतीत्व है ना, ये जो क्या कहते हैं उसको, पातिव्रत्य कहते हैं उसको, सतीत्व कहते हैं, इससे माँ ब्रह्मा महादेव भी डरते हैं, इतनी शक्ति है उसके अंदर। जो स्त्री पतिव्रता होती है, जो स्त्री सती होती है, मतलब सती यानी कि अग्नि में प्रवेश करने वाले नहीं, सतीत्व यानी पति के प्रति जो श्रद्धा सेवा भाव होता है वो इतना शक्तिशाली होता है कि ब्रह्मा भी डरते हैं उससे। ब्रह्मा जी एकदम डर गए, उन्होंने कहा नहीं, माफ करना, आप ऐसे करना कि आपको मैं एक वरदान देता हूँ बिना पूछे। तो ये है कि जब वैवस्वत मनु के मनवंतर काल में जब 28वां दिव्य युग आएगा, उसमें जब द्वापर आएगा, तब भगवान की अंतरंगा शक्ति अवतरित होगी, वो आपकी पुत्री के रूप में अवतरित होगी। तब तक, उस समय तक आप हमारे ब्रह्मा लोक में रहना, आनंद लेना, बहुत सूक्ष्म आनंद की प्राप्ति करना, दोनों आनंद आराम से रहना, और फिर दोबारा जन्म लेना जब विवस्वत मनु के मनमंत्र का द्वापर आएगा 28वां, तब आप आएंगे और राधा रानी आपकी पुत्री के रूप में प्रकट हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी बाल बाल बचे महासती के शाप से। हाँ, ये हम समझ सकते हैं कि कितनी शक्ति है भगवान राधा रानी और महासतियों के अंदर। तो उसके बाद में फिर कलावती का जन्म जो है वो इंदुसेन गोप और मुखारा देवी, ये मुखारा गांव है, मुखाराई जो गोवर्धन राधा कुंड के पास में है, इंदुसेन गोप और मुखारा देवी के कन्या के रूप में कीर्तिदा का जन्म हुआ। और कीर्तिदा का विवाह संबंध वृषभानु महाराज से नंद महाराज ने किया था। वृषभानु महाराज जो है उनका भी इतिहास आपको बताऊंगा मैं। तो इस तरह से कलावती का जन्म हुआ और कलावती कीर्तिदा के रूप में जन्म हुआ और कीर्तिदा का विवाह वृषभानु महाराज से हुआ। वृषभानु महाराज का इतिहास ऐसा है कि एक दिलीप राजा थे जो सगर राजा के वंशज थे, रघु वंश में थे, यानी कि सूर्य वंश में, सूर्य वंश और चंद्र वंश दो वंश होते हैं। चंद्र वंश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है और सूर्य वंश में प्रभु रामचंद्र ने, रघु ने और राधा रानी ने जन्म लिया है। तो इसमें सगर राजा थे आप, बड़ी लंबी कहानी उनकी, इसमें दिलीप राजा हुए और दिलीप राजा एक बार जब स्वर्ग में गए थे तो वहां पर कामधेनु गैया को प्रणाम करना भूल गए जल्दी जल्दी में, और कामधेनु गैया ने शाप नहीं दिया लेकिन उनको शाप लग गया क्योंकि उन्होंने कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। क्या शाप लग गया? निपुत्र होने का, निपुत्रिक होने का शाप लग गया। तो वो सब अपना स्वर्ग का काम निपटा के जब लौट के आए, बहुत साल बीते, उनको संतान प्राप्ति ही नहीं हुई। तो इस कुल के तो चिरंतन पुरोहित जो है वशिष्ठ मुनि जी, उनके पास वो गए और उन्होंने पूछा कि क्या कारण है, हमें संतान क्यों नहीं हो रही है। तो उस समय वशिष्ठ मुनि ने ध्यान किया, वो त्रिकालज्ञ थे, भूत भविष्य वर्तमान जानते थे। उन्होंने कहा कि आपने स्वर्ग में जाकर कामधेनु को अपराध किया, इसलिए आपको निपुत्र होने का शाप लगाया। वैसे आश्चर्य की बात यह है कि राजा जो दिलीप थे वो गाऊ के बड़े भक्त थे, फिर भी उनके हाथ से अनजाने में अपराध हुआ। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि अभी कामधेनु फिर स्वर्ग में है और उनकी बेटी नंदिनी जो है वो भी कामधेनु है, वो मेरे पास है, उसकी अगर आप सेवा करोगे तो आप इस अपराध से मुक्त हो सकते हो। तो फिर जैसे गौ भक्त थे ही वो पहले से, तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से नंदिनी की सेवा की और वो सेवा में एकदम निपुण हो गए, बहुत प्रसन्नता सेवा किया। तो फिर आखिर में नंदिनी गाय ने उनकी परीक्षा लेनी चाही और एक दिन वहां पर बड़ा एक सिंह आया और वो सिंह वो नंदिनी को खाने के लिए प्रयास कर रहा। तो राजा ने देखा तो उसने सिंह को रोक लिया और सिंह से कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मैं सिंह हूँ, मेरा भक्ष है, मुझे खाना है। तो एक काम करो, आप इस गाय को छोड़ दो और मुझे खा लो। तो सिंह कहता है, अरे तुम तो राजा हो, तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी प्रजा विश्व की निर्भर है, तुम्हारे चरित्र पर तुम तो भगवान के प्रतीक हो, मतलब भगवान के प्रतिनिधि हो, स्वयं भगवान के समान हो राजा होने के नाते, और तुम्हारा जीवन कितना अमूल्य है, तुम मनुष्य भी हो, तुम एक यक्कश्चित जानवर के लिए इतना जीवन क्यों बिता रहे हो। तभी दिलीप राजा जो कहते हैं, अब ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा कि देखिए सिंह को बता रहे हैं कि वेद जो है, सॉरी जो वैदिक संस्कृति जो है पूरी, वो वैदिक संस्कृति जो है वो 7 चीजों पर आधारित है और उससे सबसे बड़ी मूल जो आधार है उसका वो है गाय, और गाय के ऊपर निर्भर है ब्राह्मण। वो ब्राह्मण तो अपनी सेवा कर ही नहीं सकता ना, अगर गाय नहीं होगी उसके पास, गाय नहीं होगा तो दूध नहीं होगा, दही नहीं होगा, घी नहीं होगा, यज्ञ कैसे करेगा। तो गाय है तो ब्राह्मण जीवित है और पूरी संस्कृति ब्राह्मणों पर आधारित है। तो ब्राह्मणों के बाद में वेद, ब्राह्मण है तो वेद है, अगर ब्राह्मण नहीं तो वेद कौन प्रचार करेगा। तो गाय के ऊपर ब्राह्मण निर्भर है, ब्राह्मण के ऊपर वेद निर्भर है, और वेद आगे 4 चीजें हैं, जो 3 चीजें हो गई ना अभी, 7 चीजें हैं। तो चौथी चीज है सती नारी, सतीत्व पूर्ण नारी, जो मैंने कहा जैसे पातिव्रत्य पूर्ण नारी, ये भी वेदों के 7 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ है। और उसके आगे 3 प्रकार के पुरुष हैं, एक लोभ रहित पुरुष, एक सत्यवचनी पुरुष और एक क्रोध रहित पुरुष। ये 7 प्रकार के चीजों पर हमारी संस्कृति आधारित है। तो गाय की महिमा बताई उन्होंने कि गाय अगर नष्ट होती है तो ब्राह्मण, वेद, सती नारी, सब प्रकार के सत्यवचनी पुरुष सब नष्ट हो जाते हैं, उनका आधार ही नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं मरूं तो चलेगा लेकिन गाय नहीं मरनी चाहिए। तो सिंह तो बड़े प्रसन्न हो गए थे, लेकिन सिंह जो है वो शिव थे, वैसे शिव शंकर भगवान के मदद से वो जो नंदिनी गाय थी वो परीक्षा ले रही थी। तो सिंह कहते ठीक है, ठीक है, तुम्हें अगर इतना बड़ा श्रद्धा है, इतना विश्वास है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो दिलीप राजा जो है ना वो सर झुकाया उन्होंने, चलो अभी कूदेगा मेरे ऊपर, काट लेगा, गर्दन काट लेगा मेरी, झुक गए। तो सिंह ने आकाश में छलांग लगाई इसके गर्दन पर कूदने के लिए और ये मरने के लिए तैयार और समर्पित अपने आप को करने के लिए तैयार हो गए। तो क्या हुआ, वो सिंह जो है वो फूलों की माला में रूपांतरित हो गया, ही चेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लावर गार्लैंड, और वो माला उनके गले में गिरी। तो उन्हें फसल उठाई गई, तो सिंह तो गायब है। तो नंदिनी दी गाय आई प्रसन्न होकर, उन्होंने कहा कि ये तो मेरी परीक्षा थी आपके लिए, आप तो अव्वल आ गए हमारी परीक्षा में, हम बड़े प्रसन्न हैं आपसे। तो उसके बाद में फिर वो दिलीप राजा को रघु जी प्राप्त हुए हैं पुत्र के रूप में, जो हम कहते हैं ना रघुकुल की रीत चली आई, हाँ रघुनंदन राम को बताते हैं, वो रघु राजा जो थे वो रघु राजा इनको प्राप्त हुए पुत्र के रूप में। और फिर उस वंश में महा प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ और प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ, उसी आगे जाकर शत्रुघ्न जी आए ब्रज में राज्य करने के लिए, मथुरा में जो मधुबन जगह है ना वहां पर, तो वो अभय कर्ण को लेकर आए थे, वो भी इसी वंश के थे। और वो अभय कर्ण को उन्होंने ब्रज का जो इस भार को संभाला, और अभय कर्ण के वंश में रसंग राजा हुए हैं, और रसंग राजा ने सबसे पहले बरसाना एक राज्य के रूप में स्थापन किया, और फिर उसके वंश में आगे जाकर वृषभानु महाराज हुए हैं जो सूर्य के अवतार हैं, स्वयं सूर्य है वो, और उनके पिताजी का नाम था मही भानु, तो उनके पिताजी के पिताजी का नाम था कुंज भानु। तो रसंग राजा के वंश में कुंज भानु जी हुए हैं, कुंज भानु जी के बाद में मही भानु जी हुए हैं, और मही भानु जी का मंदिर भी वहां पर बरसाने में है, वृषभानु महाराज के पिताजी माताजी का वहां मंदिर है। और मही भानु के 9 पुत्र हुए, उसमें 4 बड़े और 4 छोटे और बीच में वृषभानु महाराज जो सूर्य के अवतार थे। और ये वृषभानु महाराज का विवाह नंद महाराज के मध्यस्थी से, उनके प्रपोजल की वजह से कीर्तिदा देवी से हुआ, और वृषभानु महाराज के प्रपोजल की वजह से यशोदा का और नंद महाराज का विवाह हुआ। बड़े मित्र थे अच्छे, वो दोनों गोप थे। और वो केशी के भाई से सब लोग वहां से गोकुल में जाकर शिफ्ट हो गए थे। तो रावल में विश्वानु महाराज रह रहे थे और गोकुल में नंद बाबा रह रहे थे। तो आगे देखिए, ये कथा ऐसी आती है, ये मैं आपको बरसाने का दर्शन करा रहा हूँ ये पहाड़ों का, देखिए आप मैं आगे आपको बताऊंगा पूरी तरह से। तो इसकी कथा ऐसी है कि राधा रानी का आविर्भाव कैसे हुआ। राधा रानी का आविर्भाव सबसे पहले हिमालय को पार्वती की प्राप्ति हुई। हिमालय को मैना के माध्यम से पार्वती का जन्म हुआ। अन्नपूर्णा थी, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, ऐश्वर्य संपन्न, धन संपन्न, अन्न संपन्न हो गया। तो विंध्याचल विंध्य पर्वत जो थे उनको भी लगा कि हमें भी कोई पुत्री होनी चाहिए अच्छी तरह से। तो उन्होंने तपस्या की, और क्या सोचकर तपस्या की कि मुझे ऐसी कन्या होनी चाहिए जिसका होने वाला पति महादेव को भी परास्त कर सकता है। ऐसी भावना लेकर उन्होंने तपस्या की, तृषा से नहीं, जलन से नहीं, लेकिन उनको इच्छा हुई कि मुझे भी ऐसी कन्या होनी चाहिए। तो यथावकाश उनको राधा रानी और चंद्रावली दो कन्याएं प्राप्त हुई। तो कंस को पता चला कि विंध्याचल को एक ऐसी कन्या हुई है जिसका होने वाला पति महादेव को भी परास्त कर सकता है, तो मैं ही क्यों ना उसका पति बनूं। तो उसने पुतना को पुकारा, पुतना जाओ जो दो कन्या जन्म हुई है विंध्याचल में महाराष्ट्र में, जाके उठा लाओ उसको, हम उनके साथ बड़ा होने पर विवाह करेंगे। तो पुतना जो खिचड़ी थी वो तिनके को अभिमंत्रित करके हवाई जहाज बनाकर उस पर बैठकर वो यात्रा करती थी। उसने वैसे यात्रा किया और वो विंध्याचल की हवा में से ऊपर से नीचे से नीचे आई और इन दोनों रेंगती हुई, तब तक शायद कुछ एक साल से छोटी उम्र थी उनकी, दोनों कन्याओं को उठा लिया सबके आंखों के सामने और आकाश में उड़ गई। तो विंध्याचल बड़े क्रोधित हो गए, उन्होंने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, बोला यज्ञ करो, तुरंत ऐसे मंत्र बोलो जिससे इनकी शरीर में आग उत्पन्न हो, चल जाए आकाश में ये। तो ऐसे मंत्र बोलने लगे, आहुति अर्पण करने लगे, तो पुतना के शरीर में अग्नि उत्पन्न होने लगी, आंच लगने लगी, गर्मी होने लगी, जलने लगी। तो उसने पास ही में वो एक कन्या को छोड़ दिया, दोनों हाथ को पकड़ा था दोनों कन्याओं को, एक को छोड़ दिया, वो पकड़ ही नहीं पाई उनको। तो वो विदर्भ में गिरी राजा भीष्मक के पास, और वो थी चंद्रावली। और उसकी 5 साल तक विदर्भ राज भीष्मक राजा ने उनको लालन पालन किया। फिर पूर्णमासी आई और उस कन्या को लेकर गई और विश्वभानु महाराज के चचेरे भाई चंद्र भानु जी को दिया चंद्रावली को, उनकी पुत्री बनी वो। फिर आगे वो मंत्र बोलते जा रहे हैं, पुतना आगे बढ़ रही है मथुरा की ओर, महाराष्ट्र से विदर्भ से आगे जा रही है मथुरा की ओर, और यूपी में प्रवेश करती है, मथुरा में प्रवेश करती है। तो और मंत्र से अग्नि 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 बढ़ती जाती है। तो वो जब मथुरा में प्रवेश करने वाले, लेकिन ब्रज की भूमि के ऊपर थी वो गोकुल के पास, तो उनको रहा नहीं गया, राधा रानी को छोड़ दिया, राधा रानी को छोड़ दिया। तो वो ब्रजभानु महाराज के कुंड में गिरी और फिर वो अपनी जान बचाकर पुतना कैसे भी बचकर मथुरा चली गई, तब जाकर उसका मंत्र का प्रभाव नष्ट हो गया। तो उस समय कृष्ण 15 दिन पहले जन्म ले चुके थे, पहले मथुरा में, बाद में फिर वृंदावन आए और एक रूप हो गए और योग माया ने जाकर चमत्कार किया मथुरा में। उसके 15 दिन के बाद में ये घटना हुई कि राधा रानी वहां से ऊपर गिरी। और विश्वानु महाराज जब सवेरे अपने प्रातः स्नान करने के लिए अपने कुंड में गए तो देखा कि वहां सुनहरा प्रकाश आ रहा है, और सुनहरा प्रकाश आ रहा है। तो उसके नीचे फिर आगे जाकर देखा तो वो प्रकाश तो एक स्वर्ण कमल से आ रहा है, और गौर से देखा तो वो स्वर्ण कमल से भी नहीं आ रहा है, उसके अंदर एक सुंदर कोमल कृष्णांगी कन्या है, उसके अंदर से वो शरीर प्रकाश आ रहा है। तो अचंभित हो गए, वो अचंभित हो ही रहे थे तब तक आकाश से ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की कि हे वृषभानु महाराज, तुम सुचंद्र थे पहले जन्म में, तुम्हारी पत्नी कलावती थी जो आज तुम्हारी पत्नी कीर्तिदा के रूप में प्रकट हुई है, और हमने आपको वरदान दिया था उस समय बहुत पहले कि आपने तपस्या की थी, उसके फल के स्वरूप श्री कृष्ण भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी आपकी पुत्री बनेगी, ये पुत्री आपके लिए प्रस्तुत है, इसे घर लेके जाओ, इसका लालन पालन करो, इसकी सेवा करो, ये आपके महल की शोभा बढ़ाएगी, आपके जीवन को धन्य करेगी, इसकी सेवा करने से इस आपके जीवन के अंत में आप गोलोक धाम की प्राप्ति करेंगे, ऐसा उन्होंने वरदान दिया। तो फिर बड़े प्रसन्न होकर हमारे विश्वानु महाराज ने राधा रानी को उठाया और घर ले गए। और फिर आप जानते हैं कि उन्होंने आंखें नहीं खोली, ना कुछ बोला ना कुछ सुना। ये उनका प्रण था कि कृष्ण के बिना हम किसी को ना देखेंगे, ना कहेंगे, ना सुनेंगे किसी की बात। तो नारद मुनि की कृपा से फिर बड़ा महोत्सव हुआ। कृष्ण आए छोटे छोटे रेंग रेंग के, और कृष्ण के शरीर के सुगंध से और कृष्ण के स्पर्श की वजह से राधा रानी जो है उन्होंने आंखें खोली। इस तरह से रावल में उनका आविर्भाव हुआ इस युग में। तो ये राधा रानी के जन्म की संक्षिप्त कहानी है। अब ये जो पर्वत है इसकी भी कहानी मैंने कल आपको जिक्र किया था, आज मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ आपको। वो ये था कि स्वर्ग में चर्चा हुई थी कि कौन सबसे बड़ी सती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो प्रमुख देवताएं हैं उनको पता था, उनको उनकी पत्नियों को लगा था कि हमारे बिना कौन हो सकता है, हम तो सर्वोच्च स्त्रियां हैं, स्वर्ग की सर्वोच्च स्त्रियां हम ही हैं, तो हमारे ही नाम लेंगे। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि नहीं, सबसे बड़ी सती जो सतीत्व वाली जो माता है वो है अनसुईया, जो पृथ्वी पे है, स्वर्ग में नहीं है। तो फिर वो रानियों ने ईर्ष्या से नहीं लेकिन सबके आंखों के सामने इनका सतीत्व का श्रेष्ठत्व जो है वो प्रकट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि आज उसकी परीक्षा होनी चाहिए। अगर वो सर्वश्रेष्ठ सती है तो उसका सतीत्व सिद्ध होना चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु भय नीचे गए, उन्होंने भगवती भिक्षा देही कहा। तभी ये अपने पति अत्रि मुनि की सेवा में व्यस्त थी, कुछ देर बाद आई और कहा कि देवी भगवती भिक्षा देही। तो उन्होंने कहा आइए भोजन करिए। उन्होंने कहा हमारी एक शर्त है कि आपको निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराना पड़ेगा। तो वो समझ गई कि इसमें कुछ चाल है। हाँ, बड़ी सती थी वो, बड़ी बड़ी श्रेष्ठ माता थी। अंदर गई, अपने पति का कमंडल लाया, सुबह की जो पूजा की थी अपने उनके पति ने दिन भर सुबह की प्रातः काल की, उसमें वो कमंडल में अभिमंत्रित महाप्रसादी जल था, उसको लेकर आई। और ये तीनों ऋषि बनकर आए हुए देवताओं को उन्होंने वो जल छिड़का उनके ऊपर। जल छिड़कते कि क्या हुआ, तीनों नग्न बालक बने रेंगते हुए। फिर रेंगते हुए बालकों के सामने किसी स्त्री को नग्न होने में कोई संकोच नहीं था, तो सर्वस्त्र निर्वस्त्र हो गई वो, और सभी उनको बालकों को बैठ के उन्हें गोद में खिलाया। तो बालक इतने आसक्त हो गए मैया से अनसुया से, तो क्या कहें आपको, वहीं रह गए वो। एक बार खाने को आए थे लेकिन वहीं रह गए, कई दिन तक रहे। अभी पत्नियों को पता था ब्रह्मा विष्णु महेश के कि हमारे पति तो अनसुया की परीक्षा लेने गए हैं, पता था कहाँ किस एड्रेस पे गए हैं। तो बड़े दिन हो गए, तो विरह में व्याकुल हो गई, वो ढूंढने के लिए चली गई पृथ्वी पर और अनसुया जी के पास में आई। वो कहा माता हमारे पति कहाँ है। तो अनसुया कहती है कि देखो खेल रहे हैं आप बच्चे खेल रहे हैं, अर्धे वस्त्र में नग्न वस्त्र में खेल रहे हैं। कहते हमारे पति को वापस लौटा दो, देखिए पतिव्रत का बल कैसे होता है। फिर गई अपने पति का कमंडल लाया, सुबह की पूजा वाला जल लाया और ये तीन बालकों पर छिड़का, तो तीन बालक जो है वापस ब्रह्मा विष्णु महेश बने। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश इतने आसक्त हो गए थे मैया से, मातृत्व से, वात्सल्य से, कि उन्होंने कहा कि हमें ना आपके पुत्र होने की, मतलब प्रत्यक्ष पुत्र होने की इच्छा है। पुत्रत्व का अनुभव तो हमने किया लेकिन हमें हमको आपके निजी पुत्र होने की इच्छा है। तो ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में जन्म लिए, विष्णु जी दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिए और शिव जी ने दुर्वासा के रूप में जन्म लिया। तो एक छोटी सी बात इसमें ऐसी है कि अत्रि और अनसुया, हाँ आप सब लोग नोट कर लीजिए बात को, बहुत सुंदर बात है। अत्रि यानी अत्रि जो त्रिगुण के परे हैं, सत्व रजतम, हाँ त्रैगुण्यो विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, भगवान अर्जुन को बताते हैं तीन गुणों के परे हो जा तू। तो अत्रि यानी जो व्यक्ति तीन गुण के परे हैं, और अनसुया जो व्यक्ति द्वेष से मुक्त है, असुया से मुक्त है। जब हम असुया से मुक्त होते हैं और त्रिगुण के परे जाते हैं तभी हमें दत्त प्राप्त हो, दत्त यानी देना, टू गिव, दत्त अत्रेय, दत्त अत्रि अत्रेय, अत्रि के पुत्र अत्रेय बन जाते हैं। यानी कि जब हम स्वयं अपनी साधना के बल से त्रिगुण के परे होकर असुया से मुक्त हो जाते हैं तो स्वयं कृष्ण हमारे लिए प्राप्त हो जाते हैं, ये उसका मतितार्थ है, भावार्थ है। तो तीनों को वरदान तो दिया आगे जाके पुत्र बन, लेकिन जाने के समय अत्रि देवी की पत्नी, अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया ने उनको शाप भी दिया कि तुमने हमारे सतीत्व की परीक्षा लेने का प्रयास किया, इसे हम आपको शाप देते हैं, तीनों पत्थर बन जाएंगे आप। तो ये तीनों पर्वत बने हैं ब्रज में, और किसी देवी भागवत में लिखा है कि किसी एक कल्प में प्रभु रामचंद्र ने इन तीनों पर्वतों को ब्रज में प्रतिष्ठापित किया है। श्री रामचंद्र प्रभु जी एक किसी द्वापर में, किसी त्रेता में, किसी कल्प में उन्होंने इन तीनों पर्वतों को प्रतिष्ठापित किया है ब्रज में, ब्रह्मा जी को बरसाने में, शिव जी को नंदगांव में, और गोवर्धन विष्णु की, विष्णु स्वयं गोवर्धन के रूप में विराजमान हो गए। तो ये इतिहास है, इसलिए आपको ये चार पर्वत दिखा रहा हूँ। ये चार पर्वत जैसे कि ब्रह्मा जी ने, और एक बात उनका इतिहास है, ये एक भी इतिहास है और एक भी इतिहास है। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो अज्ञान में थे, अंधकार में थे, तो भागवत में लिखा है श्री कृष्ण भगवान ने उनके हृदय में चतुश्लोकी भागवत प्रकट किया, और चतुश्लोकी भागवत के रूप में जो भी ज्ञान आवश्यक है, जो भी ज्ञान के वर्गीकरण में आता है, कैटेगरी में आता है, वो सब कुछ प्रकट किया चार श्लोक के माध्यम से। और लेकिन ज्ञान के कारण जो अनुभूति, साक्षात्कार प्रकट होना चाहिए, वो सारा साक्षात्कार भी उनके हृदय में तत्क्षण प्रकट कर दिया। तो ब्रह्मा जी को समझ में आया कि साक्षात्कार के वजह से कि श्री कृष्ण, राधा रानी इनके और भक्तों की और इनके चरणों की धूल प्राप्त किए बिना जीवन का परिपूर्णत्व प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मा जी बनने के बाद में अपने पहले कल्प के पहले सत्ययुग के पहले 60,000 साल ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। तो ब्रह्मा जी 60,000 साल तपस्या किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उनको, फिर अपनी सेवा में लग गए। सेवा तो बता दी गई थी उनको, समझ में आया था उनको सेवा क्या करनी है, सेवा में लग गए। और प्रथम सत्ययुग के अंतिम 60,000 साल में भी उन्होंने दोबारा तपस्या की, तो कुल मिलकर कितने हो गए, 120,000 साल ब्रह्मा जी ने तपस्या किया है। अब कल्पना कर सकते हैं, फूटू के लड्डू, साबूदाना खिचड़ी और दिन भर के फल और घी खाकर तपस्या नहीं किया उन्होंने, बहुत कठोर तपस्या किया 120,000 साल, और उसके अंत में कृष्ण ने उनको दर्शन दिया। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो, बोले तो ममोपरी क्रीड़ा करेश्यसि, हाँ मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे सर पे आप क्रीड़ा करो और आपकी धर्म धूल सब ब्रजवासियों को मुझे प्राप्त हो जाए। तो कृष्ण का कहते हैं वृषभानुपुरम गत्वा, हाँ आप वृषभानुपुर में चले जाओ, पहले कहते हैं ब्रज में चले जाओ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं इतना ब्रज बड़ा है कहाँ चला जाऊं, तो बोलते वृषभानुपुरम गत्वा, तो वृषभानुपुर में चले जाओ। तो वृषभानुपुर यानी बरसाना, उसका एक नाम वृषभानुपुर है, और वृषभानुग्रह भी एक नाम है शांडिल्य मुनि के अनुसार, और वरस्यानु यानी जिसकी बहुत सुंदर सुंदर पर्वत की चोटियां हैं उसका नाम वरस्यानु भी है, बृहत स्यानु भी है शांडिल्य मुनि के अनुसार कि बृहत यानी सुंदर चोटियां पर्वत की। तो ब्रह्मा जी चार मुख वाले थे, पर्वत बन गए तो चार चोटियां पर्वत की बन गई वहां पर। तो ये आपके सामने दूर से आकाश से लिया हुआ चित्रपट है, बहुत सुंदर। और इसमें देखिए ये जो लेफ्ट में दिखाई पड़ रहा है वो दानगढ़ है, यहाँ पर मोरकुटी है जिसके बीच में विलासगढ़ है, उसके आगे देखेंगे तो ये मानगढ़ है, और ये फोटोग्राफ भानुगढ़ से लिया गया है। अभी बहुत नजदीक देखेंगे तो ये आपके सामने मोरकुटी है, उसके पीछे विलासगढ़ है, फिर आगे देखेंगे तो ये दानगढ़ है, इधर इधर दानगढ़ है, इधर मोरकुटी है, उसके आगे विलासगढ़ है, और नजदीक से और आगे आएंगे तो ये मोरकुटी आ गई आपके सामने, और इसके पीछे जो है विलासगढ़ है, और ये राधा रानी का महल है, घर है, ये भानुगढ़ है जहाँ राधा रानी विराजती हैं, राधा रानी अपना महल में अपने माता पिता के साथ विराजती हैं। और अभी हम देखते हैं कि ये चार पर्वत को हम परिचय करा रहे हैं, ये भानुगढ़ है, भानु महल है उसके ऊपर, इस पर राधा रानी रहती है, उनके बड़े भाई श्रीदामा, छोटी बहन अनंग मंजरी जो बलराम जी का गोपी अवतार है, और माता पिता का नाम कीर्तिदा और ऋषभानु महाराज हैं, उनके 9 भाई हैं, 8 भाई हैं, 8 भाई को एक एक कन्या है, 8 गांव में रहते हैं, बरसाने के आसपास रहते हैं, हर एक कन्या राधा रानी की अष्ट सखी बनी है ना। तो ये दानगढ़ में जयपुर मंदिर है राधा कुशल बिहारी जी का, ये विलासगढ़ है, और ये आपके लिए मान मंदिर है मानगढ़, और ये मोरकुटी है, ये 5वां शिखर है, इसमें से विलासगढ़ जो है उसको विष्णु पर्वत कहा गया है, जो विलासगढ़ जो है वो सांवले रंग का है, कृष्ण वहां बैठा करते थे, उनके बैठने 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 से वो भी सांवला हो गया, और बाकी पर्वत ब्रह्माचल है, राधा रानी वहां ज्यादा विहार करती थी तो वो गोरे रंग के रह गए। तो ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है भानुगढ़ का, राधा रानी के महल का, हाँ ये राधा रानी का बरसाना धाम है, ये पर्वत से दर्शन मिलता है, ये बहुत भाग्यवान धाम है। यहाँ पर केवल राधा रानी की जो कृपा प्राप्त है, अनुग्रह प्राप्त है, वही जीव जन्म लेते हैं, और यहाँ जन्म लेने के पश्चात कोई दोबारा जन्म लेता नहीं है। किसी जन्म के अंत में उनको भगवत प्राप्ति, भगवत धाम प्राप्ति होती है। अगर कोई यहाँ पर जन्म लेकर अपराध भी करता है तो दोबारा यही जन्म लेता है। हो सकता है बंदर के रूप में, सुअर के रूप में कष्ट वाला जन्म प्राप्त करेगा, अपने पापों का कल फल भोगेगा, यही जन्म लेगा। लेकिन यहाँ पर एक बार जन्म लेने के पश्चात यहाँ से बाहर कभी कोई जन्म नहीं लेता है, यहीं से दोबारा तिबारा जन्म लेगा, लेकिन यहीं से ही गौलोक धाम प्राप्ति करेगा। तो अभी हम वृषभानुपुर में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पहले एक विचार मन में लाना जरूरी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विचार है। वो ये है, देखिए ब्रह्मा जी यहाँ विराजमान है। ये ऊपर मंदिर जो पहला भानुगढ़ है उसके शुरुआत में इनका मंदिर है। ब्रह्मा जी को वैसे शाप प्राप्त हुआ था कि उनका कहाँ कहीं पूजन नहीं होगा, कहीं उनका मूर्ति नहीं होगा, केवल पुष्कर में उनका मंदिर है। बहुत लंबी कहानी है उसकी। एनीवेज, तो ब्रह्मा जी हमारे सभी संप्रदायों के जनक पिता हैं, यानी कि कृष्ण के अनौरस पुत्र है, अयुनिज पुत्र है वो, और सारे संप्रदाय जो है वो सबके पिताजी हैं। वो सबके जितने जीव हैं पृथ्वी लोकों पर, 14 लोकों पर, 14 ब्रह्मांडों पर, जितने भी लोक हैं, सबके जितने भी जीव हैं उनके पिता ब्रह्मा जी हैं, और सब संप्रदाय के प्रमुख जो है वो ब्रह्मा जी हैं, सबके शीर्ष स्थान पर है वो। हमारा विशेष रूप से ब्रह्मा मध्व गौड़िया संप्रदाय जो है उसके भी प्रमुख आचार्य ब्रह्मा जी, उनके बाद डायरेक्ट कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये पर्वत बनकर यहाँ बैठे, देखिए ऐसी कोई तपस्या आज तक किसी ने की नहीं की है, तो सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ है और वो सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की है क्या करने के लिए, ब्रह्मा जी के पद से पत्थर बनने के लिए। पत्थर का मतलब क्या होता है, पत्थर का मतलब होता है मिस्टर नोबडी, कोई भी चले उनके ऊपर, कोई भी चट्टे पेशाब करे, कोई कदम अपने दल कर चले उसके ऊपर, जो चाहे कर सकते हैं, निर्जीव चा पत्थर होता है, कोई उसको अस्तित्व नहीं होता है, कोई उसकी भावना नहीं होती है, पत्थर को भावना व्यक्त करने की सुविधा नहीं होती है। ऐसे निम्न अवस्था को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने तपस्या की और वहां पर वो सर्वश्रेष्ठ कृपा प्राप्त करने के लिए पत्थर बने। तो वो ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, उनके सर पर हम चढ़ने वाले हैं, इसलिए चढ़ने के पहले ही सीढ़ी पर सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करना है, ब्रह्मा जी महाराज आप हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरु जी आपके प्रतिनिधि हैं, हमारे गुरुओं के लिए, गुरुजनों के लिए, संप्रदाय के लिए आप वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, आराध्य हैं, आपकी कृपा से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। हम आपके ऊपर चढ़कर अभी जा रहे हैं, हम वादा करते हैं आपसे कि हम किसी प्रकार का इंद्रिय भोग इन पर्वतों पर जब तक विराजमान है तब तक नहीं करेंगे। केवल श्री जी का दर्शन करने के लिए, केवल राधा रानी का दर्शन करने के लिए, उनकी कथा सुनने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए नम्रता से हम आपके ऊपर चढ़ रहे हैं, हमें आप क्षमा कीजिए, हम ये गुस्ताखी कर रहे हैं, उद्दंडता दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें आप क्षमा कर दीजिए, हम केवल श्री जी का दर्शन कथा सुनने के लिए, सेवा करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। इस भाव से हमको ऊपर जाना है और ऊपर जाने के पहले वृषभानुपुर यानी बरसाना को प्रणाम करना है। ओम क्लौं वृषभानुपुर अधिवन पतये राधा कृष्णाय स्वदाहा, राधा कृष्णाय स्वदाहा, राधाय संहितं कृष्णं ब्रह्म पर्वत संस्थितं, वंदे प्रदक्षिणां संगं सर्वदा वरदायकं, राधाय संहितं कृष्णं ब्रह्म पर्वत संस्थितं, वंदे प्रदक्षिणानां सांगं सर्वदा वरदायकं। हे वृषभानुपुर, हे अधिवन, वृषभानुपुर को बरसाने को अधिवन कहा गया है। वन जो है कई प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं वन, एक होता है प्रतिवन, एक होता है अधिवन, एक होता है उपवन। उसमें अधिवन कैटेगरी में वृषभानुपुर यानी बरसाना आता है और राधा कृष्ण यहाँ विराजमान होकर लीला करते हैं। और राधा सहितम कृष्णम, कृष्ण के साथ ब्रह्म पर्वत पर संस्थितम यानी यहाँ विराजती हैं, और हम अपने सभी भक्तों के संग में प्रदक्षिणा करते हैं, वंदन करते हैं कि आप हमें सर्वदा वर प्रदान करें। उसके बाद ब्रह्मा जी को हम प्रणाम करते हैं। तो पहले आपको मैंने बताया, ब्रह्मा जी से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके ऊपर चढ़ के जाने के लिए हमें क्षमा कीजिए। हम केवल राधा रानी को देखने के लिए, सेवा करने के लिए जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपसे कि हम एक तृण से भी अधिक नम्र बने, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। कृपा करके हमें जिस तरह से आपने अपना सर्वस्व गर्व जो है वो छोड़कर कृष्ण की, राधा रानी की और ब्रजवासियों की सेवा के लिए पत्थर का रूप धारण किया, हमें भी वैसे गर्व छोड़ देने के लिए, आप अहंकार छोड़ देने के लिए मदद कीजिए। क्योंकि अहंकार ही ऐसी वस्तु है जो भगवान से हमको अलग कर देती है। अहंकार होने से भगवान दूर चले जाते हैं। और फिर प्रार्थना करते हैं कि हमें रजोगुण तमोगुण त्यागने के लिए मदद कीजिए। बरसाना में सखी भाव सेवा भाव में प्रवेश करने के लिए आप मदद कीजिए। ऐसे हम ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। अभी हम ऊपर आ गए हैं, ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी के बाजू में मैं फोटो नहीं ला पाया उसका, राधा रानी के चरण चिन्ह का दर्शन है। उसके पहले कामधेनु का भी दर्शन है, उसका भी आशीर्वाद लेते हैं और हम आगे चलते हैं। तो हमें ये संगे मरवर की छतरी दिखाई पड़ती है। ये जो मार्बल की छतरी है इसमें तीन बार राधा रानी का विग्रह नीचे उतर के आता है। इसके भी ऊपर राधा रानी का विग्रह है और तीन बार साल में इस जगह पर राधा रानी आती है। एक बार है राधा अष्टमी, दूसरी बार है होली और तीसरी बार है हरियाली तीज। तो साल में पहले हरियाली तीज आती है, उसके बाद में होली आती है और उसके बाद में राधा अष्टमी आती है। तो साक्षात विग्रह जो है लाडली लाल के, वो नीचे आते हैं, इस छतरी में विराजमान होते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि साल भर में जब मंदिर में श्री जी विराजमान होती है तो गोसाइयों की सेवा आती है, तो गोसाई लोग पुरुष लोग उसकी सेवा करते हैं, उसको आरती कहते हैं। जब पुरुष करते हैं तो उसको आरती कहते हैं, लेकिन जब वो नीचे आती है तो उस दिन गोसाइयों की कन्याएं उनकी आरती करती है तो उसको आरता कहते हैं। तो इन तीन दिनों में शाम को पहले 4:30 बजे जब आती है तब आरता होता है कन्याओं के द्वारा, और 7 बजे दोबारा आरता होता है, वो 7 बजे फिर राधा रानी ऊपर चली जाती है। तो ये तीनों दिन हरियाली तीज, होली और राधाष्टमी, इन तीनों दिन आरता होकर कन्याओं के द्वारा राधा रानी ऊपर चली जाती है। और इसकी विशेषता ये छतरी की है कि ये छतरी में जब विराजमान होती राधा रानी तो हर प्रकार के हर जाति के लोग हैं राधा रानी का पूजन करते हैं, अपना घर से भोजन लाते हैं, पुष्प माला सभी राधा रानी को पहनाते हैं। बाकी किसी दिन पे राधा रानी को किसी भी व्यक्ति के हाथ से माला नहीं पहनाते, लेकिन जब वो नीचे आते तो अधिक दयालु बनकर आती हैं, सभी लोगों की सेवा स्वीकार कर लेती है। फिर देखिए वहां से हम आगे बढ़ रहे तो ये सीढ़ी आती है आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जहाँ पर हम लोग सुबह जाकर मंगला के पहले लाके लाइन लगाते हैं। हाँ, ये कुछ ठीक समय पर खुलता है, फिर हम लोग भागते हैं अंदर यहाँ से और यहाँ पर आ जाते हैं। राधा रानी का जगमोहन मंडप है। हाँ, राधा रानी के मंदिर के अंदर फोटो निकालना अलाउड नहीं है, दंडनीय अपराध है। दूर से चुप कर निकाला हुआ फोटोग्राफ है, इसके बीच में जाके देखेंगे यहाँ पर राधा रानी विराजमान है। और ये मंगला का सीन है मॉर्निंग का, तो करीब 5:30-6 बजे होता है। ये राधा रानी का मंदिर का अंदर का जगमोहन मंडप है और ये दूर से फिर फोटो निकाला हुआ है। इसके पीछे अभी राधा रानी बाहर आएगी, कभी कभी उनका मनोरथ होता है, कभी 56 भोग होता है, कोई विशेष उत्सव होता है, तो राधा रानी का बाहर बहुत सुंदर महल बनता है फूलों का, तो वहां अंदर से बाहर आकर बहुत नजदीक में उनका दर्शन होता है। तो ये वो स्थिति है। आइए श्रीमती राधा रानी का दर्शन कीजिए। श्रीमती राधा रानी की जय हो, श्रीमती लाडली लाल की जय हो। ये जो विग्रह हैं ये बज्रनाभ ने बनाए थे। जब कृष्ण भगवान ने उनको आदेश दिया था कि मेरे पश्चात आपको ब्रज को संवारना है, ब्रज के वनों को संवारना है, तो ये फोटोग्राफ हमने कैसे प्राप्त किया इसकी बड़ी अद्भुत कहानी है। बड़े मुश्किल से और बड़े कष्ट से गुरु जी की आज्ञा के कारण ये फोटो प्राप्त किया, तो कभी एकांत में आपको ये कहानी बताएंगे। तो ये विग्रह बज्रनाभ के बनाए हुए हैं और राधा रानी इनको लाडली लाल कहते हैं, लेकिन इनका दर्शन आप ना बड़े गौर से कीजिए। राधा रानी देखिए उनके ऊपर एक चुनरी ओढ़ी हुई है ना, आप देख रहे हैं ना, ये लाल बिंदु दिख रहा है क्या आपको, लाल बिंदु दिख रहा है, लाल बिंदु से देखिए ये जो चुनरी है ना ये राधा रानी पहन रही है, और ये तो बड़ी चुनरी पहन लगाई है ना ये कृष्ण के लिए है। तो कृष्ण भी वहां पर चुनरी ओढ़कर सती भाव में खड़े हैं, है ना। तो ये दर्शन करना बहुत जरूरी है। राधा रानी यहाँ पर छोटी सी है, कृष्ण भगवान यहाँ पर लाल जी महाराज विराजमान है, और ये जो लंबी चुनरी है ये कृष्ण के लिए उड़ी हुई है, तो कृष्ण भी सती भाव में खड़े। अभी आपको एक आश्चर्य होगा कि इस पूरे दर्शन में कहीं फूल की माला नहीं है, है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि बसंत ऋतु के बाद में जो शिशिर जो ठंडी का मौसम होता है ना, वो ठंडी का मौसम में फूल का श्रृंगार बंद करते हैं, क्योंकि फूल ठंडे होते हैं, वो ठंड लगती है उनको, अंगीठी में वो कोयला जलाते हैं, उनको गर्मी देते हैं, तो उसमें वो एक समय आता है उसका, उससे वो फूल जलाना बंद कर देते हैं, और फिर पूरे जनवरी दिसंबर जनवरी में वो फूल का श्रृंगार नहीं होता है। और फिर जब बसंत पंचमी आती है ना, तो बसंत पंचमी से फिर फूल का श्रृंगार शुरू होता है। तो हमने जब ये फोटो निकाला था तो वो सर्दी का मौसम था, हम लोग उस समय कैंप के समय पे थे वहां पर थे, तो इसलिए सब श्रृंगार जो है वो रत्नों का और मणियों का और मोतियों का है, ये विशेष बात है। यही फोटोग्राफ हमारे गोवर्धन इको विलेज में 5 फुट बाय 4 फुट का विस्तारित फोटो यहाँ पर मंदिर में विराजमान किया गया। जय हो श्री श्री राधा लाडली जी महाराज की जय हो। अब ये मंदिर में कौन कौन है, ये मंदिर में आप देखेंगे ना, इनके दो बाजू में ललिता विशाखा खड़ी है, और राधा रानी की तरफ यानी कि हमारे राइट में और राधा रानी के लेफ्ट में नीचे एक विजय लाडली जी का विग्रह है। वो लंबी कहानी है उसकी, बताऊंगा आपको उसका इतिहास भी, तो चलो बता देते, कोई बात नहीं। वो इतिहास ऐसा है कि राधा रानी के विग्रह पर मुसलमानों का आक्रमण हो रहा था, तो उस समय राधा रानी को लेकर वो श्योपुर चले गए, किशोरी दास राजा के पास, वहाँ पर मंदिर बनाया गया, वहाँ पर सुरक्षित रखा गया उनको। और फिर क्या हुआ कि उस समय विशाखा देवी को राधा रानी के स्थान पर रखा गया, इस मंदिर के क्या आराध्य पूजनीय मूर्ति की तरह। तो विशाखा देवी के आधिपत्य में जब ये आक्रमण हुआ, सभी मुगल जो मेव थे मेव, वो सब उन्होंने अटैक किया पूरा पर्वत पर, तो विशाखा देवी के प्रभाव से हर एक शत्रु के सामने एक एक सैनिक सशस्त्र प्रकट हो गया, और कुछ ही क्षणों में कुछ समझ में आने के पहले ही वो सारे सैनिकों ने उन सारे शत्रुओं के सैनिकों का वध कर दिया। बच्चू सिंह निकले थे वहां पर राजस्थान से बचाव करने के लिए, लेकिन बच्चू सिंह अपने सेना को लेकर आने के पहले ही सारे शत्रु सेना का वध हो चुका था। तो इसलिए वो लाडली जी के रूप में जो बिठाया था विशाखा को, उसको नाम लिखा गया विजय लाडली जी, यानी लाडली जी का रोल अदा कर रही थी वो और विजय प्राप्त कराया, इसलिए उनका नाम रखा गया विजय लाडली जी। जब श्री जी लौट कर आई है तो विजय लाडली जी को वहां पर नीचे रखा है और लाडली जी को अपने स्थान पर विराजमान कराया है। इसलिए आप अगर मंगला में जाएंगे ना, ध्यान से देखेंगे तो मंगला में पहले ठाकुर जी के ऊपर दीपक चला जाता है, फिर पुजारी 90 अंश में टर्न हो जाता है और राइट में आरती करता है, तो किसकी आरती करता है, वो विजय लाडली जी की आरती करता है। फिर शंख का सेवा करते हैं लाडली लाल के ऊपर से, फिर होने के बाद तुरंत थोड़ा मुड़कर राइट में शंख की सेवा होती है, वो भी विजय लाडली जी को होती है, फिर उसके बाद में पब्लिक को वो शंख दिखाते हैं और दीपक दिखाते हैं। तो इस तरह से लाडली जी के महल में बड़ा आनंद है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। जो सब दुनिया से पीट पीट कर आते हैं वो सब यहाँ पर सहारा मिलता है उनको, सब दुनिया में जो परेशान होके आते हैं ना, वो सब यहाँ पर सहारा प्राप्त करते हैं। अश्वत्थामा भी आए थे बहुत जघन्य पाप करके, उन्होंने भी यहाँ पर सहारा प्राप्त किया है। आपके दरबार में सब दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो राधा रानी से हम देखिए, ये भी नजदीक का दर्शन है, जब राधा रानी बाहर आती है किसी उत्सव के समय तो लाडली लाल जी का दर्शन है, ये राधाष्टमी का दर्शन है, और इसके आगे ये राधा रानी का दर्शन है। अभी देखिए अद्भुत दर्शन, अलभ्य लाभ, दुर्लभ दर्शन, ये इस साल के राधाष्टमी के राधा रानी के चरणों का दर्शन है, अभिषेक करते हुए चरणों का दर्शन है। सबसे जिंदगी में 35 साल के बाद पहली बार ये दर्शन प्राप्त होगा कोरोना के काल में। कौन कहता है कोरोना खराब है, बताइए, कोरोना के काल में ये दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, वो भी राधा रानी के जन्म के दिन उनका अभिषेक करते हुए ये उनके चरणों का दर्शन। मन याद करो, मन याद करो रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन याद करो, मन याद करो। श्री कृष्ण भी याद करते हैं इन चरणों को, अपने हृदय के आंगन में इन चरणों पर ध्यान करते हैं, अपने मुख पे, अपने होठों पर राधा रानी का नाम लेते हैं, वही उनका साधन है। जब हम अपनी साधना करते हैं तो कृष्ण भी अपनी साधना करते हैं। कालिंदी तट कुंज वन मंदिरे, जमुना के तर पे कुंज मंदिर में बैठकर ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद करते हैं, हृदय के आंगन में उनके चरणों का ध्यान करते हैं, मुख पे होठों पर राधे राधे पुकारते हैं, तब उनके शरीर में परिवर्तन होता है। कृष्ण कृष्ण नहीं रहते हैं, कृष्ण कुछ और बन जाते हैं जो कृष्ण नहीं है। ये शक्ति है इन चरणों में। सारा विश्व जो है, सारा निर्माण जो, सारा सृजन जो है, वो कृष्ण के चरणों का आश्रय लेता है, और वो सबके आश्रय कृष्ण जो है, विषय विग्रह जो है, वो आकर राधा रानी के चरणों में आश्रय लेते हैं। राधा रानी का जो चरण है वो आश्रय विग्रह है, राधा रानी स्वयं आश्रय विग्रह है, आश्रय देने वाली है, और इनका आश्रय ग्रहण से करने से विषय जो हमारे जीवन में प्राप्त करना है वो विषय विग्रह श्री कृष्ण जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। सब लोग दिल में समेट लीजिए इन चरणों को, और फिर आप उनके बाद में उनका मुख कमल का दर्शन कीजिए। श्री राधे विश्वभानु नंदिनी दुलारी, राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधा रानी की जय हो। और एक बात बताना भूल गया, ब्रह्मा जी के मंदिर के पास भानुगढ़ पे चढ़ने के पश्चात जो ब्रह्मा जी का छोटा सा मंदिर है, उसके नीचे जो राधा रानी के चरण चिन्हों का दर्शन है, वो पुजारी बताते हैं गोसाई लोग कि राधा रानी के चरण जिस आकार के हैं, उसी आकार के चरण चिन्ह वहां पर विराजमान है। ये बड़ी अद्भुत बात, दर्शन कर लो, श्रीमती राधा रानी की जय हो। तो राधा रानी को क्या प्रणाम करेंगे हम, जब राधा रानी के विग्रह का दर्शन करते हैं ना, ये देखिए ये विग्रह राधा रानी के है ना, इनको देखकर ये प्रणाम करना है। मैं आपको भी मंत्र बताता हूँ, नमः प्रियायै राधायै ब्रह्मणो वरदायिने सर्वेष्ठ फल रम्याय राधा कृष्णाय मूर्तये। ओ राधे, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए, आपने ब्रह्मा को बहुत वरदान दिया है, आप यू आर द बेस्ट रिजल्ट ऑफ ऑल वर्शिप, सारी पूजा का आप सर्वश्रेष्ठ लाभ हो, आप कृपा कर पर मुझ पर कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। फिर आप मंगला की आरती लीजिए, आए ही हो श्री जी के मंदिर में तो मंगला जी मंगला का आरती लीजिए। ये जो नीचे है ना, इसके देखिए मैं लाल रंग से दिखाता हूँ आपको, ये जो है ना, ये बरसाने के रज है, रोज ताजी रज इस गोल रूप में आती है, उस पर वो दीपक जो राधा रानी के आरती में चलाते हैं वो उसको लगा कर वहां रखते हैं, फिर हम जैसे लोग वहां पर उसको चोरी कर लेते हैं, है ना। ये जो ब्रज रज है बरसाने की, देखते हैं कि वो दीपक बुझ गया बुझ गया बुझ गया तो देखते रहते हैं, जब एक बार बुझ गया तुरंत उसको उठा लेते हैं, फिर उठा के किसी को जन्मदिन पे किसी को गिफ्ट दे देते हैं, क्योंकि अरे ये रज जो है ना वो साक्षात कृष्ण ललायत है, इसके 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 चरण ये रज को प्राप्त करने कृष्ण भी रोते हैं वहां जाके, ऐसी रज है वो, तो साक्षात राधा रानी की कृपा है, ऊपर दीपक है नीचे रज है। जय हो श्री राधे श्याम। और लीजिए तो राधा रानी से अभी प्रार्थना कुछ देखी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपके हृदय से प्रार्थना उमड़ आ जाए, इसलिए मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, तो मैं कुछ सोचता हूँ इसके बारे में। तो राधा रानी से क्या प्रार्थना करेंगे आप, राधा रानी हम तो बड़े पतित हैं, बड़े दुर्गुणी हैं, बड़े पापी हैं, कोई योग्यता नहीं हमारी आपके सामने आने की, लेकिन आप तो अनंत कृपालु अनंत करुणामयी है, करुणामयी पुकार सुनो अब, करुणामयी पुकार सुनो अब, पुकार सुनो, पुकार सुनो, पुकार सुनो, पुकार सुनो, करुणामयी पुकार सुनो, अब सुन लो तेर हमारी ओ वृषभानु दुलारी, सुन लो तेर हमारी ओ वृषभानु दुलारी, राधे 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 राधे, सुन लो तेर हमारी ओ ब्रज की रखवारी, सुन लो तेर हमारी ओ वृषभानु दुलारी। चरणों में आश्रय दो, अपना बना लो, सब गुनाह माफ कर दो, आपके दरबार में सबको आश्रय मिलता है, हमें भी आश्रय दो, अपना बना लो, कृष्ण के चरणों में रखो। माया हमें बहुत फटकारती है, आप अपने आंचल में रखो, माया से बचा के रखो, कृष्ण की सेवा में रखो। हम आपका आपका ही आश्रय ग्रहण करने के लिए इतने दूर आए हैं, हमें ठुकराओ मत, हमें स्वीकार कर लो, हम बड़े दीन हैं, आप दीनों के दीन वत्सला है। ओ दीन वत्सला राधे, कृपा करो, करुणा करो, दया करो, हे करुणामयी, हे कृपामयी, हे प्रेममयी, हे वात्सल्यमयी, हे दयामयी, हे करुणा निधान, हम जैसे पतितों को स्वीकार करो। जय जय श्री राधे श्याम। फिर हम मंदिर से बाहर निकलते हैं और मंदिर को जो प्रदक्षिणा करते हैं तो उसके पीछे जाएंगे, उसका फोटोग्राफ मेरे पास नहीं है, लेकिन वहां पर एक सुंदर स्थान है, वहां पर राधा रानी अपने मंदिर के पीछे नंदगांव की ओर खड़े होकर कृष्ण को इशारे करती है, तभी उनके भावना के बल से वहां का पत्थर पिघल जाता है और राधा रानी के चरण चिन्ह तैयार हो जाते हैं। तो राधा रानी के चरण चिन्ह वहां पर हैं, वहां पर फोटोग्राफ नहीं है, तो चरण चिन्हों को दर्शन करके गर्ग संहिता में लिखा है राधा कृष्ण के हस्त पाद चिन्ह और शरीर के चिन्हों का दर्शन करने से दोबारा भौतिक दुनिया में जन्म नहीं होता है। दर्शन कीजिए, मन से प्रणाम कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी दूसरे शिखर की ओर, इसका नाम है दानगढ़, और उस रास्ते में एक अद्भुत स्थान आता है, वो ये है जहाँ पर नारद मुनि के अवतार नारायण भट्ट गोस्वामी ने राधा रानी के विग्रहों को प्रकट किया था। इसकी कहानी ऐसी है कि जब बज्रनाभ ने उनको स्थापन किया, यथावकाश ये सारे विग्रह लुप्त हो गए, राधा गोविंद जी, मदन मोहन जी, कुपिनाथ जी, सब जितने भी विग्रह बनाए थे सब लुप्त हो गए, तो राधा रानी का विग्रह भी लुप्त हो गया। तो आज से 400 साल पहले नारायण भट्ट गोस्वामी ने ऊंचे गांव में जन्म लिया, तो जब वो बड़े हो गए, साधु बन गए, तभी उनको स्वप्न दिया राधा रानी ने, और स्वप्न में उनको हाथ पकड़कर इस पेड़ के नीचे लेके आए और राधा रानी ने बताया कि यहीं पर मैं हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मंदिर में विराजमान करो। तो नारायण भट्ट गोस्वामी ने बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, प्रेम से राधा रानी का विग्रह इस पेड़ के यहाँ से उसको प्रकट किया। तो आप वंदन कीजिए, राधा रानी का प्राकट्य स्थल है ये, श्रीमद राधा रानी की जय हो। ये हमें श्री जी के मंदिर से जयपुर मंदिर के रास्ते पर लेफ्ट साइड में मिलता है। हरे कृष्णा। जब हम पहुंचते हैं इस भव्य दिव्य मंदिर के पास में, और अभी आप केवल इस मंदिर का जो कला कुसर है ना, जो आर्ट है, आर्ट कला जिसके अंदर छुपी हुई है, उसको देखो खाली, देखिए कैसे झरोके बने हुए हैं, ऐसी कला कुसर जो है ना, इसको बनाने में बहुत साल लगे, हाथी पर लाद कर पत्थर लाए गए, कई साल तक उसकी कला कुसर बनाई गई, उसके बाद में कई सालों के बाद में मंदिर बनाए, देखिए एक एक झरोका देखिए, आज उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन 400 साल के बाद में भी कितना सुंदर स्थिति में मंदिर है बिना मेंटेनेंस का। हाँ, मेंटेनेंस रखते तो क्या बात थी। देखिए इसके आगे देखिए, ये कला कुसर देखिए, कितने कमरे हैं, कम से कम 100 कमरे होंगे उसके अंदर, 2 मंजिल का मंदिर है, भव्य दिव्य मंदिर है। आगे देखिए, छोटे छोटे झरोखों में डिजाइन देखिए, साइड में देखिए, खिड़की में देखिए, फिर पहले माले का दर्शन कीजिए, फिर हाथी का दर्शन कीजिए, फिर ऊपर फूलों का दर्शन कीजिए, तुलसी वृंदावन का दर्शन कीजिए, देखो ना सुंदर तुलसी वृंदावन, ये राजा थे वो, राजा सवाई माधो माधो सिंह जयपुर के राजा थे, उनको लगा था कि राधा रानी का मंदिर जीर्ण हो गया है, तो राधा रानी के लिए एक भव्य मंदिर बनाया जाए। तो जगह कहाँ है, तो दानगढ़ पे जगह थी, तो कई साल तक प्रेम से डिजाइन बना के बड़े ही प्रेम से श्रद्धा से भाव से धन से तन से मन से इतना सुंदर मंदिर बनाया इन्होंने। हाँ, और क्या हुआ, हुआ क्या, इतने साल के बाद में अभी कल के दिन राधा रानी का विग्रह भानुगढ़ से दानगढ़ के इस नए मंदिर में आने वाला है। बड़ा उत्सव आयोजित किया गया है और बड़े धूमधाम से राधा रानी का विग्रह यहाँ पर आने वाला है कल। तो आज रात को जब राजा ने विश्राम किया तो राजा को स्वप्न आया और राधा रानी ने आकर दर्शन दिया। अब राजा रानी दर्शन किसी को देती है, तो शुद्ध भक्त उसको दर्शन देती है, साधारण जी को दर्शन नहीं देती। तो राजा रानी ने दर्शन दिया और कहा कि हे राजा, आपने बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, लेकिन भानुगढ़ मेरा निज धाम है, निज घर है, मेरे पिताजी का घर है, मैं वही रहना चाहती हूँ, वहां छोड़ के यहाँ पर नहीं आ सकती, तो मेरा चिरंतन घर है। अभी अगर आप उसकी जगह पर होते क्या बोलते, आपके मन में एक ही प्रश्न आता, पहले क्यों नहीं बोला, पहले क्यों नहीं बोला, इतने समय के बाद में बोलने के लाभ लाभ क्या है, पहले बोलते इतना काम नहीं करता मैं, अभी कल तो स्थापना करनी और आप आज बोल रही हैं। ये हमारी क्या है ना, शहर की मनोवृत्ति है, स्वार्थी मनोवृत्ति। राजा ने मंदिर क्यों बनाया था, राधा रानी के आनंद के लिए। और जब राजा को पता चला कि राधा रानी का आनंद वही रहने में है तो मेरा भी आनंद उसी में है, नो प्रॉब्लम, राजा रानी मंदिर बना दो, क्या हुआ, आपका आनंद सर्वश्रेष्ठ है, योर हैप्पीनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप मंदिर को जब देखेंगे ना, जितनी गहराई में इसकी कला को देखेंगे उतना आपको पता चलेगा कि कितना मेहनत किया उसने। अरे धन की बात नहीं कर रहे हम, भावना की बात कर रहे हैं, कितनी प्रेम से मंदिर बनाया है, जो 400 साल के बाद में भी इस सुंदर अवस्था में है, फिर भी एक क्षण में इस मंदिर में राधा रानी के विग्रह लाने की जो इच्छा थी वो त्याग दी उन्होंने राधा रानी के आनंद के लिए। तो सर्वतोपरि क्या है, सर्वतोपरि राधा रानी की खुशी है। हमारे प्रभुपाद भी क्या बताते हैं, हाँ राधा रानी खुशी हो गए, मार्किन भागवत धर्म की कविता में लिखते हैं वो कि जीवन का उद्देश्य राधा रानी को खुश करना है, जब वो खुश हो जाएंगे तो कृष्ण खुश हो जाएंगे, जब कृष्ण खुश हो जाएंगे तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। द अल्टीमेट पर्पज इज टू प्लीज राधा रानी सो दैट शी कैन प्लीज कृष्णा बाय हर प्लेजर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मंदिर में प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वार्थ स्व अर्थ से विहीन होकर सेवा करनी है, क्योंकि तो हमारी कैसी मनोवृत्ति है, खुद भी सेवा हम करते हैं ना, तो भगवान की सेवा ही करते हैं, लेकिन उसमें भी हमारा कुछ लाभ रहता है, लाभ भावना रहती है कि हमको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, हाँ पगार बढ़ना चाहिए हमारा, अरे इतना भगवान का नाम जप किया तो अच्छा पति मिलना चाहिए, इतना भगवान का नाम जप किया तो अच्छा बच्चा होना चाहिए, इतने साल से बच्चा नहीं हो रहा है, राधा रानी को सेवा करके क्या लाभ है, बच्चा तो होना चाहिए, ये हमारे मन में सुप्त इच्छा ही स्वार्थी इच्छा रहती है। लेकिन अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञानम कर्म अनावृतम आनुकुल्येन कृष्ण अनुशीलनम, ये भक्ति की व्याख्या रूप गोस्वामी ने की है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, केवल राधा रानी की खुशी की अभिलाषा होनी चाहिए और अन्य खुद की भी खुशी की अभिलाषा उसके अंदर सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। तो हम प्रार्थना करते हैं राजा सवाई माधो सिंह के व्यक्तित्व को हम अपना आदर और सम्मान प्रकट करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ भाव को यहाँ प्रकट किया है। तो हमारी प्रार्थना है इस जगह पर ये हाथ जोड़कर कि हमें निस्वार्थ होकर निरपेक्ष होकर सेवा करने का बुद्धि दीजिए, कहीं भी ऐसा ना हो कि हमारी इच्छा आपके प्रसन्न होने की इच्छा के ऊपर हावी हो जाए और आपका आनंद, यही हमारा एकमेव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये हम यहाँ पर अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं और आगे चलकर आएंगे तो हम दानगढ़ पे पहुंचेंगे। दानीगढ़, ये दानगढ़ का दूसरा हिस्सा है, ये रास्ते पे चढ़ेंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे तो हम दानगढ़ पे आएंगे। ये दानगढ़ जो है दूसरा शिखर है ब्रह्माचल का और ये झूला का व्यवस्था है, यहाँ झूला स्थली है और आगे जाकर देखेंगे ये पुराना चित्रपट है, ये नया चित्रपट है और ये झूला के सामने आगे जो दिखता है, झूला के बीच में से वो मंदिर है और ये झूला है और ये ऊपर से दिखाई पड़ रहा है, झूला और रास मंडल, रास जिला का भी स्थान है, झूला का भी स्थान है और जब रास यहाँ पर पिया था तो ललिता जी को प्यास लगी थी, तो भगवान ने अपने मुरली से पत्थर में से कुआं खोदा था, मीठा जल का कुआं निर्माण किया था और ललिता जी को जल प्रदान किया था। उसका फोटो हमारे पास नहीं है, वो ललिता कुप हमारे सामने जो झूला है उसके लेफ्ट साइड में नीचे है, पत्थर में है, कभी पानी निकलता नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता। और ये दान बिहारी जी का दर्शन है, राधा दान बिहारी जी महाराज। हाँ, तो राधा दान बिहारी जी का दर्शन ऐसा है कि राधा रानी यहाँ पर कृष्ण के रूप में है, कृष्ण राधा रानी के रूप में है। इसकी कथा आपको आगे बताएंगे। साकरी कोर में जो लीला हुई है उसके अनुसार दान बिहारी दानगढ़ पे ये जो कृष्ण है वो राधा जी हैं, और जो राधा बने वो कृष्ण हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारी कथाएं हैं, एक कथा बता देता हूँ। राधा रानी यहाँ पर जो कृष्ण है ना वो याचक बनकर राधा रानी के चरणों में बार बार गिरते हैं, प्रेम रति राग अनुराग की भिक्षा मांगते हैं। राधा रानी ललिता उनको बहुत कठोर शब्द उच्चारण करते हैं, फिर भी वो बार बार चरणों में गिरते हैं, रति दो प्रेम दो। हा? अरे सारे प्रेम बताना, मैं आपको आगे भूल गया कि सभी प्रेम का उगम राधा रानी है, प्रेम की मूर्ति है वो, प्रेम देवी है वो, और उनके चरणों के नुपुर से वेदों की ध्वनि निर्माण होती है, उन्हीं के द्वारा रस का निर्माण होता है। कृष्ण अगर रसराज हैं तो रस की प्राप्ति राधा रानी से करते हैं, फिर रस का विकास करते हैं, रस का प्रचार करते हैं पूरे ब्रज के अंदर। राधा रानी रस का उगम है, राधा रानी महाभाव का उगम है, आठ प्रकार के प्रेम जो है, हाँ, रति प्रेम स्नेह भाव राग अनुराग मान और प्रेम, ये आठ प्रकार के जो प्रेम के अंग हैं वो सभी के उद्गम राधा रानी है। और वो महाभाव जो है केवल राधा रानी के अंदर ही उद्गम होता है उसका, उसके बाद कृष्ण को प्राप्त होता है, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण को प्राप्त होता है और जगन्नाथ जी के रूप में कृष्ण को प्राप्त होता है। लेकिन राधा और कृष्ण इसके अलावा ये महाभाव किसी को भी प्राप्त नहीं है, केवल राधा रानी इसका उगम स्थान है। और वो प्रेम के कृष्ण भिक्षुक है, तो यहाँ पर आकर भिक्षा मांगते रहते हैं। यहाँ पर एक ब्राह्मण आया था, वो रो रहा था कृष्ण के सामने और वो भिक्षा मांग रहा था कि मेरी तीन कन्या है, मुझे तीन कन्या की विवाह के लिए कुछ चाहिए, दे दो आप दान। तो कहते मेरे पास तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं कुछ दे दो कुछ दे दो। तो कृष्ण ने बहुत सोचा मेरे पास क्या है, सोचा कि मेरे पास राधा रानी है, तो राधा रानी को दान दे दिया ब्राह्मण को। तो रोमन पहले रो रहा था, अब जोर से रोने लगा, तो पहले तीन थे अभी चार हो गए, तीन की विवाह की चिंता थी अब चार कर दिया तुमने। ब्राह्मण पर भगवान को दया आई, भगवान ने गोपियों से कहा गोपियों एक तराजू लेके आओ, राधा रानी को एक जगह बिठाओ, दूसरे पलड़े में जितने भी आपके गहने हैं सब उतार दो, और राधा रानी के वजन के जितने गहने हैं वो ब्राह्मण को दान देंगे। तो राधा रानी की स्वर्ण तुला अलंकार तुला हुई है, फिर भी राधा रानी बहुत भारी थी, पलड़ा ऊपर था गहनों का। तो राधा रानी के गहनों के पलड़े में फिर तुलसी रखी गई प्रेम से, वो इक्वल हो गई, और फिर वो सारे गहने ब्राह्मण को दान कर दिए, राधा रानी को मुक्त कर दिया। ब्राह्मण भी खुश हो गया, बड़ा आशीर्वाद दिया और चला गया। तो ये रासस्थली है, झूला स्थली है, बहुत प्रेम की स्थली है। यहाँ प्रार्थना क्या करेंगे कि मैं जैसे कृष्ण भिक्षा मांगते हैं प्रेम की और सेवा की, वैसे हम वहां पर प्रेम की और सेवा की भिक्षा मांगते हैं। हाँ, कृष्ण की सेवा के लिए कभी भी दान मांगने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, है ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी दान लीलाएं हमेशा हमारे हृदय में स्फुरित होती रहे, ये हमारी प्रार्थना है। और आपके दान लीला के इस सुंदर महोत्सव में मैं भी कुछ सेवा के लायक एक तुच्छ सेवक बनूं, एक औजार बनूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर और आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता है पहाड़ पर बना हुआ, ये अभी हम लोग जा रहे हैं विलासगढ़ की ओर। ये है विलासगढ़, नाम से ही पता चलता है ये विलासगढ़ है, भगवान ने विलास किया है, झूला झूले हैं, रास किया है। देखो रास मंडल भी आपको दिखाई पड़ता है ना यहाँ पर, ये देखो छोटा सा रास मंडल है यहाँ पर। यहाँ पर वैसे आम लोगों को चढ़ने की जगह नहीं है, इसको पर्वतारोहण करके ही माउंटेनियरिंग करके आप चल सकते हैं, इसलिए अधिकतर हम लोग यहाँ पर पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत कठिन चढ़ाई है, लेकिन चढ़ के गए जरूर हैं, कई बार जाते भी हैं। और यहाँ की जिला ऐसी है कि यहाँ पर तो नित्य भगवान झूला झूलते हैं, रास करते हैं, बहुत विलास लीलाएं करते हैं। लेकिन एक लीला यहाँ पर बताई गई है कि राधा रानी यहाँ पर रानी बनती है, सब सखियां मिलकर उनको रानी बना देती है, छत्र धारण करती है उनके ऊपर। हाँ, और ललिता जी मंत्री बनती है, विशाखा देवी चवन धारण करती है चवन सेवा करने के लिए, सब अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं और दरबार सजाते हैं। दरबार में फिर एक चोर को पकड़ के लाते हैं, चोरी के गुनाह के कारण। वो कौन है? श्याम सुंदर जी। और उसका मुकदमा चलता है ललिता जी के नेतृत्व में। फिर राधा रानी के आधिपत्य में उस चोर को माफ किया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसी सुंदर सी छोटी सी लीला इस पर्वत की बताई गई है, लेकिन बाकी तो अनंत यहाँ पर प्रेम की लीलाएं चलती रहती हैं। कभी आप ऊपर गए नहीं होंगे, इसलिए आपको मैं बहुत निकट के दर्शन करा रहा हूँ। देखिए, ध्यान से देखिए, ये विलासगढ़ की भूमि है। विलासगढ़ जी महाराज की जय हो। ये विलासगढ़ का रास मंडल है, ये नजदीक से बड़ा रास मंडल है। ये विलासगढ़ का वन है और हम विलासगढ़ को प्रणाम करते हैं। सब लोग हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। विलास रूपिणे तुभ्यम नमः, कृष्णाय ते नमः, सखी वर्ग सुप्ताय क्रीड़ा विमल दर्शिने। हे विलासगढ़, आप सब सखियों को और कृष्ण को आनंद देते हो। आप कृष्ण के लिए दिव्य आनंद देने वाले हो। आप बहुत पवित्र हो। आपको मेरा दंडवत प्रणाम है। हे विलासगढ़ धाम की जय हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं मोरकुटी की ओर। बहुत सुंदर रास्ता बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सफर है। इन पर चलने के लिए बहुत भाग्य की जरूरत है। यहाँ पर चलना, राधा रानी के पर्वत पर राधा रानी के दर्शन करना, बहुत ही आत्मा के लिए जो आनंद आत्मा को चाहिए, जिसके लिए हम तड़पते रहते हैं, वही आनंद यहाँ पर बड़ी सहजता से प्राप्त होता है। और यह है मोरकुटी। एक सेकंड के लिए हम थोड़ा विश्राम लेते हैं। महामंत्र बोलो। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो मोरकुटी की बहुत लीलाएं हैं। एक यहाँ पर अंधे बाबा रहा करते थे। और यहाँ पर पहले आपको एक काम करते, पहले आपको मान मंदिर की लीला बताते हैं, फिर आपको इसकी कथा बताते हैं। लेकिन दर्शन कर लो, ये चित्रपट दोबारा दिखाएंगे आपको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। चित्रपट आगे नहीं बताया, आईटी को बोला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आईटी को बोला।